नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह हमारे साथ डॉक्टर सचिन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है। मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्ते, ओम शांति।
ओम शांति।
जब हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि जब आंतरिक स्ट्रगल बहुत होता है तो हमें किसी की मदद की आवश्यकता होती है, पर कई हम ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो मेरे संपर्क में आए हैं जो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, बार बार हिचक होती है उनको अंदर से कि हम बार बार पूछे उनको कैसे डिस्टर्ब करें और कैसे डिस्टर्ब करें, इसीलिए कई दिनों तक वो फोन भी नहीं करते हैं या मदद नहीं मांगते हैं। तो फिर वो और कैसे मदद प्राप्त कर सकते
हैं? इसके कई सारे तरीके हैं। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं या बचपन में उनका अपब्रिंगिंग ऐसे हुआ रहता है कि ज्यादा किसी को परेशान नहीं करने का। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बार बार मम्मी के पास जाता है, मम्मी ये, मम्मी हो, मतलब चुप, अभी और कुछ पूछने का नहीं, पूछेगा तो मार पड़ेगी। तो बचपन में उसका ऐसे प्रोग्रामिंग अगर हो चुका है कि ज्यादा पूछेंगे तो मार पड़ेंगे, इसलिए वो पूछने से ही डरते हैं, उनके अंदर वो प्रोग्राम चला गया। तो बड़े होने के बाद भी उनके बिहेवियर में वो संकोच रहता है हमेशा कि कैसे बोले, हम कैसे बात करें, इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, इसमें काफी टाइम चला जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें बीमारी भी बढ़ने लगती है और ये अंदर ही अंदर उसको कैसे कहते हैं कि घुटते रहते हैं, अंदर चोकअप फीलिंग आ जाती है। ऐसे लोगों को बहुत मदद की जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए दूसरा एक तरीका है, सबसे अच्छी बात है कि उनको ये प्रोग्राम को बदलना है ना, अपने आप से बात करने की। बचपन में मैं छोटा था, मेरे पास ताकत नहीं थी क्योंकि मेरे से बड़े लोग थे, मम्मी पापा या अंकल, जिनके पास बहुत ताकत थी, अगर मैं कुछ बोलूं तो मुझे मार सकते थे। लेकिन अभी तो मैं बड़ा हो चुका हूं और बचपन का समय अलग था। अभी मैं अपनी बात को, मेरे को कहना चाहिए अच्छी तरह से क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है और मुझे मदद की जरूरत है। अगर मैं चुप रही तो बीमारी और बढ़ेगी और हो सकता है कि मैं जिस घर में हूं मेरे वजह से और भी लोग परेशान हो सकते हैं, या मैं जिस ऑफिस में हूं वहां पर भी मेरा ये स्वभाव मुझे तकलीफ दे सकता है। तो ऐसे लोगों को अपने आप को बात करके अपने आप को इस परिस्थिति से निकालना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए अपने आप से कि नहीं, अभी मैं बड़ी हो चुकी हूं, बड़ा हो चुका हूं, बचपन का वो समय अलग था, अभी मैं अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकता हूं, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं अच्छी तरह से अपनी बात को लोगों के सामने रखता हूं, समस्या किसी के भी जीवन में आ सकती है और समस्या के वक्त जब हम खुद अपनी शक्ति से नहीं निकल पाते हैं तो समझदारी इसमें है कि दूसरों से मदद लेनी चाहिए। डायरेक्ट प्रोफेशनल लोगों के पास जाने के बजाय जो अनुभवी लोग हैं और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके पास में जाके बात करो। ऐसे लोगों के दोस्त भी मैंने देखा कम होते हैं,
है ना,
फ्रेंड्स भी कम होते हैं। तो जो भी, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिसके ऊपर आपका विश्वास है, आप उनसे ओपन अप हो जाइए, अपने दिल की बात कह दीजिए। ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर ऐसे बहुत सारे बहने भाई जो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास आते हैं वो जैसे ओपन होते हैं उनको एक हल्कापन महसूस होता है कि ये बात इतने दिनों से मेरे अंदर थी। और वो व्यक्ति जब वो परिस्थिति में फंसा हुआ रहता है तो वो खुद अपने आप को साक्षी होकर नहीं देख पाता है, इसलिए उसको सोल्यूशन नहीं मिलता है। जब हमारे सामने वो बात रखते हैं तो हम साक्षी होकर उस परिस्थिति को अच्छी तरह से देखते हैं और सोल्यूशन देते हैं। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि अपने आप से बात करना सीखे। अगर ये भी आपको नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका मनोविज्ञान में इस्तेमाल करते हैं कि आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं वो आप किसी कागज के ऊपर निकाल लो,
ठीक है, कुछ लिखना,
हाँ,
चाहिए,
लिखना चाहिए उसको कि जो भी आपको फील हो रहा है, कि समझो आपको कोई परेशान कर रहा है आपके ऑफिस स्टेशन में या घर में, जो भी आपको समस्या है या आपकी अपनी आदतें हैं जिसकी वजह से, आप उसको कागज के ऊपर लिखो, लिखते जाओ। सबसे अच्छा तरीका जो हमने ब्रह्मा कुमारी में देखा है, जो बहुत इफेक्टिव रहा है, इसके ऊपर बहुत प्रयोग हो चुके हैं, कि हम लोगों को कहते हैं कि जब अगर आप मेरे से बताने में भी आपको संकोच आ रहा है, कई बार ऐसे इश्यूज रहते हैं, पर्सनल इश्यूज रहते हैं कि शर्म के मारे लोग वो भी नहीं बताना चाहते हैं, तो मैं कहता कागज के ऊपर तो लिखो और वो कॉन्फिडेंशियल कागज आपके पास ही रहेगा। इसका फायदा यह होता है कि जब आप अपनी बातों को जो आपके मन के अंदर है या दिल में है उसको कागज पर उतारते हो तो आपको क्लैरिटी मिलने लगती है, आप उसी बात को साक्षी होकर देख रहे हैं, दो बातें साइमल्टेनियसली हो रही है। एक, आपके अंदर जो भी भावनाएं है उसको जैसे बाहर निकालते हैं ना तो वो एक हल्कापन आ जाता है कि वो बाहर कागज के ऊपर आ गए। और दूसरी बात, उस परिस्थिति को मैं साक्षी होकर देख रहा, अच्छा ये परिस्थिति है, ये सिचुएशन है, तो इसका ये सोल्यूशन है, तो
है।
मेरे पास क्लैरिटी आने लगती है, स्पष्टता आने लगती है, जो बगैर लिखे नहीं आ सकती, अनलेस आप यहाँ पे क्लियर हो। और मेजॉरिटी ये लोग इमोशनल क्लाउडिंग होता है, उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते, भावनाएं रहते हैं, और ये बादलों की तरह रहते हैं। जैसे जब बादल आता है या कोहरा आता है तो हमको स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता
जी।
जिनको लिखने की आदत है, ऐसे कई लोग हमने देखे हैं जो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं, रोज दैनंदिनी लिखते हैं, रोज रात को सोने के पहले वो लिखते हैं, डायरी लिखने की आदत रहती है, तो वो अपने जीवन के प्रति स्पष्ट रहते हैं कि सुबह से लेकर रात तक आज मेरे जीवन में क्या हुआ, कहाँ मेरी गलतियां हुई, कहाँ मैंने जोर से बात की, कहाँ मैंने गुस्सा किया, कहाँ मुझे अच्छे लोग मिले मेरे साथ। तो वो लोग रात को जो पोता मिल कहो या जमा खर्च वो पूरा लिखते हैं, उससे उनको अपने आप को इवेल्युएट करना इजी होता है। और एग्जैक्टली राजयोग में हमको परमात्मा सिखाते हैं
कि इस तरह से हमें अपना अकाउंट रखना चाहिए।
और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे प्रयोग किए, हमने तो ऐसे कॉम्पिटिशन लिखी कि बच्चों के साथ किया, बड़ों के साथ भी करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। मैंने खुद ये अभ्यास किया इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि रोज, अगर रोज नहीं हो सकते तो हम कहते हैं हफ्ते में 2-3 दिन तो आप परमात्मा को खत लिखो, लेटर टू गॉड। ये लेटर टू गॉड जो कंसेप्ट है ना, इतना अच्छा कंसेप्ट है कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, उसको आप खत लिख रहे हो, दिल की सभी बातें लिख दो, क्योंकि वो पतित पावन है, वो अविनाशी सर्जन है ना। शरीर की बीमारी के साथ आत्मा की बीमारी को भी वो ठीक कर सकता है, तो उसको खत लिखते लिखते हमने देखा बहुत लोग हल्का महसूस करने लगे।
यानी अगर हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम लिखकर भी उससे हल्का हो सकते हैं,
हल्का हो सकते हैं, और उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको उसमें से समाधान स्वयं आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा मैं कहूंगा ये दोनों को भी इस्तेमाल करें तो नथिंग लाइक इट। जैसे मेरे पास जब आते हैं तो मैं ये सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने देखता हूँ कि बेस्ट टेक्निक जिस पर्सनालिटी के साथ जैसी है वैसे सूट होती है ना, तो वो कमाल हो जाते हैं। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि वो परमात्मा से डायरेक्ट शक्तियों को प्राप्त करे, ये राजयोग में सिखाया जाता है। तो डायरेक्ट परमात्मा से शक्ति आती है ना, तो किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये चाहते हैं राजयोग में कि हर व्यक्ति बिना किसी सहारे के अपने समस्याओं को खुद सुलझाए, और परमात्मा की मदद से ये संभव है, ऐसा हमारा अनुभव है। जरूर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जब आपको मदद की जरूरत है और जब आप वो शक्ति नहीं ले पा रहे हो, तब आपको जरूर किसी न किसी का सहारा लेना ही चाहिए।
आपने ये बात सही कही कि हम लोग अगर किसी से बात नहीं कर सकते तो लिखना चाहिए, हमारा अपना स्ट्रगल रहता है, हम परमात्मा से डायरेक्ट मदद नहीं ले सकते तो किसी और से ले सकते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं कि जिनको पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हम किताबों से भी ऐसी कुछ मदद ले सकते हैं या सिर्फ फिर अपने अंदर ही इंटैंगल रहेंगे?
क्लैरिटी जरूर आपको मिलती है, लेकिन फिर आप क्या पढ़ रहे हो उसके ऊपर भी है, क्योंकि पढ़ना अच्छा। केवल पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने के बाद उसके ऊपर चिंतन होता है, उसके ऊपर फिर उसका अर्थ निकाला जाता है, जो भी बताया गया सोल्यूशन उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो पढ़ना जरूर चाहिए जो पॉजिटिव सॉल्यूशंस है, लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनको पता रहता है कि कौन से समय पे कौन सी दवाई काम करती है। जैसे मैंने देखा है कि कई लोग केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, उनको पता है, या फार्मासिस्ट होता है उनको पता है कि ये बीमारी में ये दवाई काम करती है, लेकिन अगर उसका डोज बराबर नहीं है, वो दवाई आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार नहीं है, तो इफेक्ट के बजाय साइड इफेक्ट भी हो सकता है और नुकसान भी दे सकते हैं।
यानी पढ़ना भी हमें क्या चाहिए, कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद भी अगर हम अपने ही विचारों के एक ही पैटर्न में खोए हुए हैं तो शायद वो वर्क नहीं करेगा, तो इससे बेटर है
कि मेरे पास ये भी पेशेंट आते हैं, वो किसी किताब को पढ़ के कोई दवाई कोई नुक्स चालू कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम बढ़ जाता है। टीवी देख के, टीवी के ऊपर कई सारे ऐसी चीजें आती है जो इस्तेमाल करते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम कहेंगे कि सेफ रहे, है ना, अननेसेसरी एक्सट्रीम माना ऐसे प्रयोग न करें कि जिससे आपको नुकसान हो सकता है, एंड देर इज नो अल्टरनेटिव टू मीटिंग अ राइट एंड प्रोफेशनल पर्सन, को जरूर मिलना चाहिए।
बहुत अच्छा,
ये
बहुत
किसी
अच्छा।
को भी हो सकता है, इवन हम भी डॉक्टर्स हैं, जब हम भी बीमार पड़ते हैं तो हम अपना इलाज जितना हो सके खुद नहीं करते, हम दूसरे प्रोफेशनल के पास जाते हैं, नहीं तो क्या होता है, हमारे से भी हम भी परिस्थिति को साक्षी होकर अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रोफेशनल सही व्यक्ति को मिले, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये प्रश्न तब आता है कि जब वो संकोच वाली पर्सनालिटी कुछ कर नहीं पाते, तब हम क्या करना चाहिए, पर अल्टीमेटली आपको सही व्यक्ति को ही मिलना चाहिए।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम कर्मों के बारे में ही बात कर रहे थे कि जब हम कर्मों के अपने फल में एंटेंगल हो जाते हैं, अदर वो बुरा या अच्छा फल, जो भी फल है, लेकिन बुरे फल के समय हमको बहुत तकलीफ होती है उसमें से निकलने में। ये बात पे चर्चा करते करते मुझे कई चीजें सामने मेरे आ रही थी कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर इफेक्ट है और इसलिए ये सब हो रहा है हमारे साथ में। यानी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि हमारे कर्मों का फल है, जब हम कहते हैं हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर इफेक्ट है या कुछ ऐसा है, हमारे पहले के लोग कुछ करके गए हैं, हम हमारी जिम्मेदारी भूल जाते हैं कि हमने किया हुआ है।
हमने देखा है कि जब कोई गलती होती है तो हम दूसरों को दोष देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, और जब अच्छा काम होता है तो क्रेडिट लेने को तैयार होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पूर्वजों ने किया है, किसी और ने किया है, या और कुछ भी कारण हो, रियलिटी या वास्तविकता यह है कि आपके ऊपर वो एनर्जी का इफेक्ट आ रहा है। सिंपल है, माना हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते, सिंपल शब्दों में कहे कि आप अपने स्वयं के साथ कंफर्टेबल है, खुद के साथ नंबर वन। दूसरा कि आप दूसरे लोगों के साथ कंफर्टेबल है। नंबर थ्री, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, क्या आप उसके साथ आप कंफर्टेबल है, माना आप स्टेबल है, स्थिर है, प्रसन्न है। अगर इसमें से कहीं पर भी आपकी अवस्था हलचल में आती है तो आपको अपने को देखना चाहिए। पास्ट या भविष्य में जाने के बजाय वर्तमान में रहकर अपने आप को चेक करें कि चलो पूर्वजों ने किया या किसी और ने किया है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव है
जी।
हम फिर से उसी बात के ऊपर आते हैं कि अगर आप पॉजिटिव है तो दो बातें होगी। अगर वो एनर्जी आ भी रही है कहीं से, जैसे कि पास्ट से आ रही है आप कह रहे हैं या किसी और से आ रही है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम आएगा या ना के बराबर आएगा। और आपके द्वारा वो निगेटिव एनर्जी निकलने के बजाय आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तो नया अकाउंट नहीं बनेगा। होता क्या है कि अगर ये समझो आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, पर पूर्वजों से आ रही है या कोई और मेरे को भेज रहा है एनर्जी, अगर वो निगेटिव एनर्जी मेरे पास आ रहा है और मैं भी निगेटिव एनर्जी कर रहा हूं, तो दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। एक तो वो निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट और मैंने नया निगेटिव एनर्जी जनरेट किया, तो प्रॉब्लम बढ़ता है। और फिर कहते हैं कि पता नहीं बहुत दिन हो गए ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम आपकी ये निगेटिव एनर्जी को दूर कर
देंगे। जी जी, बहुत सारी विधियां भी बताते हैं।
हाँ, और मेरे को ऐसे लगता है कि ये फियर है, ये जो डर है ना, ये डर का लोग फिर फायदा उठाते हैं
जी।
डर का बिजनेस है ये। मुझे ऐसे लगता है कि यह सिचुएशन है, मैं सिचुएशन को ना नहीं कह रहा हूं
जी।
जीवन में जब कई बार समस्या आती है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो कहते हैं कि डेढ़ महीने से हम इलाज कर रहे हैं, उसको उल्टी हो रहा है, रुक नहीं रहा है, सब रिपोर्ट आए नॉर्मली, क्यों हो रहा है
जी,
समझ में नहीं आता है। तो एलोपैथी में हम कहते हैं कि जब सब कुछ करने के बाद नहीं होता है तो मन का खेल है, ठीक है ना, माइंड गेम है। पर कुछ लोग उसको मानना कठिन होता है, तो फिर वो सोचते कुछ तो और कहीं से
और
आ
कहीं
रहा
से आ रहा है,
तो वो निगेटिव एनर्जी कोई तो भेज रहा है, ऐसे संकल्प आने चालू होते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये फलाने ग्रह की ऊर्जा है, ये ग्रह का इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है,
वैसी दशा चल रही है।
हाँ, वो एक कोई तो गलत दशा चल रही है जिसके वजह से ऐसा आ रहा है। मैं इन बातों में जाने के बजाय मैं ये कहता हूँ सोल्यूशन क्या है, अगर आ रही है तो मेरा काम क्या है।
तो राजयोग में हम कोई विधि नहीं करते हुए, राजयोग ऐसी क्या विधि है कि जिससे के थ्रू हम इसको खत्म कर सके, तो उसके लिए स्पेशल कुछ मेडिटेशन है?
स्पेशल मेडिटेशन मैं आपको ये बताता हूँ मेरे जीवन का अनुभव
जी।
जब हम ज्ञान में चले तो ज्ञान का जो जीवन है, राजयोग की जीवन, उसमें हम सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करते हैं, हमारा भोजन पवित्र है, शुद्ध है, तो हमारे घर वालों को लगा कि ये अभी ब्रह्मा कुमारी गया तो ये सन्यासी हो जाएगा, तो उनके बहुत सारे संकल्प चले, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। और उसमें का एक प्रयोग जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ, मेरे ग्रहों की शांति करने के लिए 4 पंडित बुलवाए हमारे लौकिक माता जी ने, और बहुत बड़ा यज्ञ रचा। और मुझे बचपन से भक्ति मार्ग का ऐसे संस्कार नहीं था, तो मुझे थोड़ा विचित्र लगा कि मेरे लिए सब करने की क्या जरूरत है। तो मैंने वो जो पंडित थे उनको पूछा कि ये सब क्यों करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्रह रहते हैं उनका हमारे ऊपर जो प्रभाव रहता है, तब हम क्या करते हैं हमको पता नहीं चलता है
जी।
तो मैंने उनको एक ही सवाल पूछा कि ग्रह जड़ है या चैतन्य है, तो उन्होंने कहा ग्रह तो जड़ है। फिर मेरा अगला सवाल, आत्मा जड़ है या चैतन्य है, तो उन्होंने कहा आत्मा चैतन्य है। फिर मैंने कहा जड़ का चैतन्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या चैतन्य का जड़ के ऊपर, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा गायन है कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, भगवद गीता में भी ये श्लोक आया है कि कैसे संकल्प से सृष्टि पैदा होती है
जी।
कि परमात्मा ने संगम युग पर ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की, इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं, स्थापना पालना और परिवर्तन, ये परमात्मा का कार्य है। तो मैंने कहा संकल्प की सृष्टि है, अगर उनका प्रभाव पड़ता है तो हमारा भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तब वो थोड़ा चुप हो गए, पर वो यज्ञ वगैरह होने के बाद में मैंने उनको कहा कि आप हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर चलो, तो वो भी देखना चाहते थे क्या है। तो वो जो पंडित ब्राह्मण था उसको हमने बाबा के कमरे में बिठाया, और वो बाबा का किरण वाला चित्र था। तो मैंने कहा परमात्मा एक प्रकाश है, हम सब मनुष्य आत्माओं का पिता है और उससे हमको शक्ति मिलती है। तो वो ब्राह्मण पंडित जो मेरी शांति करने आया था वहां पे बहुत देर तक शांति से बैठा रहा
जी।
और बाहर आके कहने लगा कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर लाया, मेरे 2 साल का टेंशन 2 मिनट में खत्म हो गया। तो जो मेरी शांति करने आया था परमात्मा की याद से, उसे खुद को शांति मिल गया और मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं तो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। और वो जो मंत्र वगैरह उन्होंने पढ़े मेरे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आया,
क्योंकि आप नहीं मानते थे।
हाँ।
या आपको जैसे एक सही राह मिल गई थी। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायलेमा है जिनके लाइफ में, वो ये भी पसंद करते हैं साथ साथ में दूसरी बातें, मतलब उनमें भी विश्वास थोड़ा थोड़ा अभी भी है उनका, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि कुछ एक जगह से अगर हम लेते हैं तो हमें उससे क्या फायदा होता, या अगर हम बहुत जगह पे लड़खड़ाते हैं तो उससे क्या होता है।
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अगर पानी चाहिए तो 50 जगह पे 1-1 फुट नहीं खोदना चाहिए, एक ही जगह पे 50 फुट खोदोगे तो पानी मिलेगा। आप जो कह रहे हैं ना बदलने वाले लोग, आज इधर गए इधर काम हो जाएगा नहीं तो उधर हो जाएगा, ये लोग की कहीं स्थिर आस्था नहीं होती है। मुझे इतना पता है कि अगर हम पॉजिटिव है अंदर से और हम निरंतर पॉजिटिव रहते, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहते, तो परिस्थिति जो भी आनी है, कर्मों की वजह से आओ या और किसी कारण की वजह से आओ, हम उसमें अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जो भी विधियां करते हैं लोग, अभी उसमें सफलता है नहीं सफलता है, मैं एक साइंटिस्ट हूं, हम डबल ब्लाइंड स्टडी के बगैर इसको मानते नहीं, कि क्योंकि हम ये मानते हैं कि 100 में से 33% लोगों में आप सिर्फ विश्वास के आधार पर ठीक हो जाते हैं उनके प्रॉब्लम, इसको हम प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं। तो साइंटिस्ट इन बातों को नहीं मानते हैं, चलो मान के भी चलो कि इन लोगों के पास शक्ति है, वो एनर्जी, पर वो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन मिलने वाला है एनर्जी से मिलेगा
जी।
उसका परमानेंट इलाज यही है कि हमको पॉजिटिव बनना है अंदर से, हमारा मन सकारात्मक हो। तो इन लोगों के पास जाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, प्रॉब्लम तो वैसे ही बना है। तो मैं ये कहता हूं कि जो मैनेजमेंट में भी कहते हैं, आपने अगर नाम सुना स्टीवन कोवे करके, बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है जिन्होंने काफी सारे किताबें लिखी, उन्होंने भी कहा है कि परिस्थिति के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल पर से डायरेक्टली नहीं है, हमारा एक ही कंट्रोल है हमारे विचारों के ऊपर, जो आध्यात्मिकता कहते हैं। तो हम अपनी ऊर्जा को जितना सकारात्मक बनाए रखेंगे, आज तक जितने भी सफल लोग होके गए, अगर आप उनकी जीवन पद्धति को देखो तो ऐसे नहीं कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आई थी, समस्या बहुत थी, लेकिन उनकी एनर्जी उन्होंने पॉजिटिव रखी जिसकी वजह से उस परिस्थिति पर उन्होंने विजय प्राप्त किए, उनके ऊपर भी इफेक्ट आया। पर मैं यही कह रहा हूं कि बाहर कहीं और जगह पे जाने के बजाय आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें, और स्वयं की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। और मेरा ये खुद का अनुभव है, जब ऐसी परिस्थितियां जीवन में आई, जब हम ध्यान में रहते हैं और परमात्मा की शक्ति को अनुभव करते हैं, तो अपनी खुद की शक्ति और परमात्मा की शक्ति की वजह से हम उस परिस्थिति में या तो विजय प्राप्त करते हैं या फिर उस परिस्थिति का जो हमारे ऊपर इफेक्ट आने वाला होता है, जो हमने कहा ना पत्थर की लकीर, वो रेत की लकीर बन जाती है, और रेत की लकीर है तो पानी की लकीर हो जाती है, तो इफेक्ट कम आता है और हम उस परिस्थिति से निकल पाते हैं।
आज हम जो ये बात कर रहे थे कि हमारे कुछ पिछले इफेक्ट्स होंगे, कुछ पूर्वजों के इफेक्ट्स होंगे, उसके बारे में आप हमें थोड़ा मेडिटेशन में अगर गाइडेंस देंगे तो शायद मुझे लगता है हमारे दर्शक मित्रों को भी इसकी काफी मदद हो सकती है।
अलर्ट होके बैठेंगे, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेके पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे और महसूस करेंगे कि मेरे दोनों हाथ पैर, छाती, पेट, चेहरा और गर्दन बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में जा रहा है और महसूस करेंगे कि हमें सुंदर दिव्य प्रकाश दो आंखों के बीच चमक रहे हैं। ये शरीर भारी है पर हम बिल्कुल हल्के हैं और हम शांत स्वरूप हैं। मैं एक दिव्य प्रकाश इस शरीर का मालिक हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा एक ज्योति स्वरूप है और उनका दिव्य प्रकाश आशीर्वाद के रूप में मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। महसूस करें एक नीले रंग का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ते जा रही है। मैं शांत होते जा रहा हूं। मैंने आज महसूस किया कि पूर्वजों से या और कहीं से भी कोई भी ऊर्जा अगर मेरे पास आ रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को मैं अपने आप से दूर रख सकता हूं। अगर मैं अंदर से पॉजिटिव हूं, परमात्मा सदैव मेरे साथ है, तो ये ऊर्जा मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। मैं निर्भय हूं और निश्चिंत हूं क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। उसकी शक्ति की वजह से मैं स्वयं को भी एक शक्तिशाली आत्मा महसूस कर रहा हूं। मैं ईश्वरीय संतान, उस सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जीवन की कोई भी परिस्थिति में मैं अपना धैर्य बना सकती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी सकारात्मकता को कभी नहीं छोड़ूंगी, सदैव पॉजिटिव रहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होते जा रही है, मेरा मन और शरीर एकदम शांत होते जा रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूं। शांत, स्वस्थ और प्रसन्न हूं। ओम शांति 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 है।
बहुत बहुत धन्यवाद आज के आपके पूर्ण मार्गदर्शन के लिए। बहुत सी बातें आज आपसे फिर से जानने को हमको मिली कि कैसे पूर्वजों के भी अगर इफेक्ट होंगे तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स होगा तो हम उस एनर्जी को भी रोक सकते हैं। ये सभी बातें आज आपसे फिर से जानी, बहुत बहुत अच्छा लगा हमको।
थैंक यू।
दोस्तों, आज के पूरे एपिसोड में डॉक्टर सचिन ने हमको बहुत ही गहराई से ये चीज बताई कि अनेक जगह पर जाने के बजाय अगर हम एक ही जगह पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाए, एक ही जगह पर अगर हम अपना ध्यान पूरा लगा दे तो शायद हमको उसमें से बहुत सारी प्राप्तियां हो सकती है। आप इसका प्रयोग कीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।